मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे विचारों की वैक्सीन के अलग अलग कोणों पर बात की थी कि किस तरीके से हम अपने विचारों में मजबूती ला करके और वर्तमान में जो कोरोना का आतंक फैला हुआ है इसका मुकाबला कर सकते हैं। और उसके तहत मैंने इमोशंस की बात की, उसी के तहत मैंने आभामंडल की बात की, थॉट्स की बात की, आस्था की बात की, इन सब पर काफ़ी विस्तार से बातें हुई। और मुझे इस बात की खुशी है और इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सब ने बड़े खुले मन से और पूरे उत्साह के साथ मेरी बातों का, मेरे विचारों का स्वागत किया है। इसी के साथ ही मुझे कुछ मेल ऐसे भी मिले हैं जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं की चर्चा की है, और उनमें से एक बहुत ही आम समस्या जो हमेशा आती रहती है वह कुछ इस तरीके की है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहते हैं, अपने आभा मंडल को भी बहुत ही पवित्र और निर्मल बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो बाहर के लोग होते हैं ये ऐसा नहीं करने देते, नहीं रहने देते, नहीं होने देते। कहने का मतलब है कि बाहरी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे विचार बदल जाते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं, मन में खुश हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आ जाता है और उठपटांग बात कह के चला जाता है आपसे, और आप उस बात पर सोचने लगते हैं और आपकी जो पूरी की पूरी चिंतन की धारा है वो उलट करके नकारात्मक हो जाती है। आप कहाँ तो शांति के साथ बैठे हुए थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, कहाँ एक व्यक्ति आया, यानी कि आप शांत झील की तरह थे, एक व्यक्ति आया, उसने छोटा सा कंकड़ उछाल दिया उस झील में और उसमें विचारों की ऐसी लहरें उठने लगी कि वो सारी की सारी शांति भंग हो गई और जो सोचने की दिशा थी वो बिल्कुल ही नकारात्मकता की ओर जाने लगी और जाते जाते यहाँ तक पहुँच गई कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारे अंदर झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है, कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है, प्रतिशोध की भावना भी पैदा होने लगती है कि अच्छा मुझे मौका मिले तो मैं फिर उसे बताता हूं। इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अब इन सब से कैसे बचा जाए, और डेफिनेटली इसका भी संबंध कहीं ना कहीं थॉट के वैक्सीन से ही है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बिंदु पर भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और ये सबके साथ होती है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूं और अभी बड़े बड़े तरीके आपको बताऊंगा तो मेरे साथ नहीं हुआ होगा। मेरे साथ भी होता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उसे कंट्रोल किया और आज भी हो जाता है लेकिन काफी कम होता है। आप भी वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे जो अपने अनुभव रहे हैं, दूसरों के साथ इस विषय को लेकर के जो बातचीत होती रही है, उन्हीं तथ्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक फिलोसोफर का नाम शायद ही आपने सुना हो, शायद ही इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत महान फिलोसोफर मैं उन्हें मानता हूं, यू जी कृष्णामूर्ति। खासकर ये विदेशों में ज्यादा पॉपुलर थे, हमारे भारत के ही रहने वाले हैं और इनके साथ मुझे कुछ दिनों तक रहने का मौका मिला। दोस्तों, इन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, किताब तो नहीं लिखी है लेकिन जो इंटरव्यूज दिए हैं उनके कलेक्शन 2-3 किताबों के रूप में उपलब्ध हैं। उनमें से एक किताब का मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया है और उसका शीर्षक है दिमाग ही दुश्मन है, थॉट इज योर एनमी। आप शायद किताब के इस नाम से सहमत नहीं होंगे और हो सकता है कि आप कुछ विचलित भी हो जाएं। दिमाग ही दुश्मन है, दिमाग कैसे दुश्मन हो सकता है? मैं तो आपसे थॉट के स्ट्रांगनेस की बात कर रहा हूं कि अपने विचारों को मजबूत बनाइए, वो आपका साथी है, आपका तारणहार बनेगा, आपका उद्धार करेगा, आपको इम्यून पावर प्रोवाइड करेगा, और उसे ही मैं कह रहा हूं थॉट इज योर एनमी। तो दोस्तों, शुरू में सच पूछे तो मुझे भी यह बात बिल्कुल भी नहीं जचती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम पढ़ाई करते हैं अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, सत्संग करते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें हो रही हैं और वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमारे विचार बेहतर बन सके, और पता लग रहा है कि वही विचार हमारे दुश्मन है। तो क्या हम अपने दुश्मन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अपने दुश्मन को मजबूत बनाना चाह रहे हैं? मुझे भी इस सिद्धांत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद, और केवल सुनने के बाद ही नहीं बल्कि तर्क वितर्क करने के बाद, अंततः मैंने पूरी तरह से समर्पण करके और इसे स्वीकार कर लिया कि यस, दिमाग ही दुश्मन है। और इसके बाद उन्होंने एक लॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी थ्योरी मुझे बताई। लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जिसे आप कह सकते हैं तार्किक अवलोकन, उसे इस बात को उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कहा था। कहते थे वो कि अपने विचारों का अवलोकन करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, और जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगोगे तो पाओगे कि चीजें कितनी धीरे धीरे बदलती चली जा रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विचारों को हम अपना साथी मानते हैं, अपना विश्वसनीय मानते हैं, पता लग रहा है कि हमारे वे ही विचार झूठे हैं, हमारे साथी न होकर के हमारे दुश्मन हैं। लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम उसका अवलोकन करें। अगर हम विचारों को सीधे सीधे सही मान करके चलेंगे तो बात खत्म हो गई। मित्रों, फ्रांस के एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं, देकार्ते नाम आपने सुना होगा, सन 1650 के आसपास के फिलोसफर हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप सच को जानना चाहते हैं तो आपके सामने जितनी भी चीजें आ रही हैं उन पर आप कम से कम एक बार तो डाउट कीजिए ही कीजिए, एक बार डाउट कीजिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, और इससे पहले उन्होंने कहा कि आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि मैं संदेह करता हूं इसीलिए मैं सोचता हूं, और चूंकि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यह उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कल आपसे और बात करूंगा। मुझे लगता है कि अभी जो बातें मैंने की हैं वो थोड़े से हटकर हैं, हटकर इस मायने में कि जिस तरीके से हम अभी तक बातों को देखते समझते सुनते आए हैं उनसे यह हटकर है, उनसे यह अलग है। अलग क्या है, बल्कि उनसे ये बिल्कुल विपरीत है। तो आप सब भी थोड़ा सा इस पर विचार करें। डेफिनेटली इस विषय पर मैं कल भी बातें करूंगा, और हो सकता है कि तब चीजें आपके सामने ज्यादा स्पष्ट हो सके और आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको निदान मिलने में भी मदद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।